ये आकाशवाणी दिल्ली है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व घाटा हुआ। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को मौजूदा सत्र की 3 बैठकों के लिए निलंबित किया गया। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमसानी ने आज नोएडा में सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति से संबंधित रिपोर्ट में कहा है कि इस नीति के कारण सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली विधानसभा में आज पेश की गई रिपोर्ट में दिल्ली में शराब की आपूर्ति के विनियमन और निगरानी करने वाले आबकारी विभाग के तरीकों में कई विसंगतियां उजागर हुई हैं। इसमें कहा गया है कि थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, होटल क्लबों और रेस्तरां को जारी किए गए लाइसेंस में नियमों की अनदेखी की गई है। विभाग ने विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी करने में नियम और शर्तों तथा आबकारी नियमों से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं की जांच किए बगैर लाइसेंस जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
200 से अधिक पन्नों की इस रिपोर्ट में गलत निरीक्षण रिपोर्ट से लेकर कारण बताओ नोटिस की कमी, शराब नीति में क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों से सुरक्षा जमा की गलत वसूली और शराब नीति में अन्य खामियां शामिल हैं। केंद्रीय लेखा परीक्षक ने पिछली सरकार में शराब की गुणवत्ता नियंत्रण की कमी को उजागर किया और शराब नीति के कार्यान्वयन में आई समस्याओं के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ रिटेलरों ने नीति की अवधि समाप्त होने तक लाइसेंस बनाए रखे, वहीं कुछ ने नीति अवधि समाप्त होने से पहले ही लाइसेंस लौटा दिए, जिससे आपूर्ति में विघटन हुआ और लगभग 900 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि 2017-18 से अब तक कैग की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने संविधान में कैग रिपोर्ट से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन किया। सदन में रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली ने आरोप लगाया कि पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया। सकलेन अख्तर के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को पेश करने में देरी करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता बैजयंत जय पांडा ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश करके दिल्ली के लोगों के प्रति अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लोग इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे ताकि पता चल सके कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आबकारी नीति में किस तरह भ्रष्टाचार किया।
इसलिए ये रिपोर्ट का तो दिल्ली की जनता बहुत समय से इंतजार कर रही थी और वो सच सामने आ ही गया, जिसकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने कैसे दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। इस शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपए की चोरी, कमीशन, दलाली खाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे के अनुरूप हमारी सरकार ने विधानसभा सत्र में पहले सत्र में एक रिपोर्ट सीएजी की रखी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं कि कैसे शराब घोटाले में एक एक स्टेप बाय स्टेप दिल्ली को काम किया।
इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 28% से अधिक भ्रष्टाचार ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था और सभी को पता था कि शराब के ठेके किस पार्टी के लोगों के पास हैं।
ये सब जानते हैं कि जो शराब बेचने वाले थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिन्हें शराब के ठेके मिले हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिनको शराब बनाने के ठेके मिले हुए थे।
दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को उनके अभद्र व्यवहार के कारण मौजूदा विधानसभा सत्र की 3 बैठकों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इनमें विपक्ष की नेता आतिशी और आपके वरिष्ठ नेता गोपाल राय भी शामिल हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सुबह जब सदन को संबोधित कर रहे थे तभी विपक्ष सदस्यों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कक्ष से कथित तौर पर डॉ बी आर आम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाए जाने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही इस आरोप का खंडन किया है। हंगामे के बीच स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बार बार सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विरोध जारी रखा। बाद में अध्यक्ष ने इन विधायकों को सदन से निलंबित करने की घोषणा की। उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली सरकार नीति मार्गदर्शन के लिए विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को दस्तावेज के रूप में अपनाएगी और लोगों से किए गए सभी वायदों को पूरा करेगी।
आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि आप विधायकों ने अपने निलंबन को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच दिल्ली विधानसभा का सत्र 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की नवगठित सरकार में उप मुख्यमंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री का पद ग्रहण किया। अपना पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। श्री सिंह ने कहा कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को अगले 100 दिनों की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये केवल चार्ज ही नहीं है, सारे दिल्ली वासियों को बहुत सारा आशाएं हैं, बहुत सारा विश्वास है। हमने वो जिम्मेदारी ग्रहण करी है। मेरे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। हम बहुत ही मेहनत करके सारे दिल्ली वासियों की आशाओं को पूरा करेंगे। और मैंने सारे अधिकारियों को, सारे डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि अभी से वो अगले 100 दिन का भी और अगले 6 महीने का भी, 1 साल का भी हमें अपना रोड मैप बनाने के लिए मैंने बोला है।
पिछली सरकार के कार्यों पर टिप्पणी करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सीएजी की सभी रिपोर्ट आने पर स्पष्ट हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया है और इसके लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
और खाली 100-200 के कोई घोटाले की बात नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला है। मगर अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं कि उन्होंने कितने हजार करोड़ का घोटाला किया है। तो मेरे को लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट के बाद में अरविंद केजरीवाल को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक आज नई दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर स्थित निगम कार्यालय में हुई। इस दौरान निगम में कार्यरत 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा दिल्ली में संपत्ति कर में छूट देने वाली गृह कर माफी योजना के प्रस्ताव को भी सदन में पारित किया गया। इस योजना के अंतर्गत भवन स्वामियों को वर्ष 2024-25 का संपत्ति कर चुकाने पर पिछले सभी लंबित करों को माफ कर दिया जाएगा और 100 से 500 गज वाले भवनों का संपत्ति कर आधा कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत 1300 रिहायशी सोसाइटी को भी संपत्ति कर में 25% की छूट दी जाएगी। भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में कल जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार कल विकासपुरी, बेरीवाला, महरोली, ईयू ब्लॉक पीतमपुरा, के ब्लॉक सावन पार्क और मादीपुर में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली की एक अदालत ने आज 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह फैसला सुनाया। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमसानी ने आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरस आजीविका मेले का ये 5वां संस्करण है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
केवल एक मेला नहीं बल्कि एक आंदोलन दिख रहा है, एक ऐसा आंदोलन जहां हमारी ग्रामीण महिलाएं केवल कामगार नहीं बल्कि काम देने वाली है, गृहिणी ही नहीं बल्कि उद्यमी है और केवल लाभार्थी नहीं बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति की नेता है।
इस वर्ष सरस आजीविका मेले में विभिन्न राज्यों से हथकरघा, हस्तशिल्प वस्तुएं, साड़ियां, विभिन्न राज्यों के व्यंजन और अन्य घरेलू उत्पादों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा रहा है। मेले में 30 राज्यों से स्वयं सहायता समूह की 450 दीदियां 200 स्टॉलों के माध्यम से अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पंजाब से मेले में पहुंची प्रदर्शक बलवीर कौर ने बताया कि उनकी फुलकारी साड़ियों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
मेरे नाल 20 औरत काम कर रही है, असि फुलकारी का काम कर रहे हैं। पहले मैं कभी नहीं सी आई, पहली बार आई हूं। समान लेके बहुत अच्छी बिक्री हो रही है, मैं साड़ी बेचती हूं, फुलकारी साड़ी।
वहीं त्रिपुरा की प्रदर्शक रेखा देवरा ने भी मेले को लेकर अपने अनुभव साझा किए।
तो हमारा तो स्टॉल में ना शॉप बेम्बू क्राफ्ट है, ऐसे तो प्रोडक्ट नीज खुद बनाता है एसजी दीदी का। तो 12 दीदी का हमारा एसजी एक ग्रुप है, तो उसका हमारा पूरी मैंने सामान का बनाता है।
ये मेला परंपरा, कला और संस्कृति विषय पर आधारित है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदियों की निर्यात क्षमता के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। मेले में आगंतुक अदरक, चाय, दाल, कॉफी, पापड़, सेब, जैम और अचार जैसे प्राकृतिक खाद्य उत्पाद काफी पसंद कर रहे हैं। 10 मार्च तक आयोजित इस मेले में आगंतुक निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन के साथ अमन यादव।
अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा के इस सत्र के दूसरे दिन आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सदन को संबोधित किया। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी कर अवरोध पैदा किया, जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें सदन से पूरे दिन के लिए निष्कासित कर दिया। हालांकि बाद में दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अगली दो बैठकों के लिए 21 आप विधायकों को निलंबित कर दिया गया। सदन में आज शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की गई। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार को 2021-22 की आबकारी नीति के कारण 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। अभिभाषण में उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली सरकार लोगों से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को अपनाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने बताया कि सभी विभाग प्रमुखों को सरकार की प्राथमिकताओं पर अमल करने के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सदन में चर्चा की जगह अमर्यादित असंसदीय आचरण किया जा रहा था। हालांकि अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सभी को चेतावनी दी, लेकिन गतिरोध नहीं थमा तो विपक्ष की नेता आतिशी सहित आम आदमी पार्टी के विधायकों को अगले दो बैठक के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से भीमराव आम्बेडकर का चित्र हटाकर उनका अपमान किया है। इसके बाद सदन दोबारा शुरू होने पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन में रखी। रिपोर्ट पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि 2017-18 से आप सरकार ने सीएजी रिपोर्ट नहीं पेश की। इस पर भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और तब से कोई सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जबकि ये सीएजी रिपोर्ट के आधार पर आंदोलन करके ही सत्ता में आए थे। वहीं भाजपा विधायक अशोक गोयल ने कहा कि कैग रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार को 2021-22 की आबकारी नीति के कारण 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई दुकान गैर अनुरूप क्षेत्र में है तो उसे सरकार से पूर्व स्वीकृति लेकर खोला जाना चाहिए। आबकारी विभाग ने गैर अनुरूप क्षेत्रों में प्रस्तावित दुकानों के लिए डीडीए और दिल्ली नगर निगम से टिप्पणी लिए बिना जून 2021 को प्रारंभिक निविदा जारी की गई। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार की शराब नीति से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को मौजूदा सत्र की 3 बैठकों के लिए निलंबित किया गया। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमसानी ने आज नोएडा में सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।